यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो नः पशुभ्य तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु तुम्ही इंद्र अविनाशी बृहस्पति अर्यमा तुम्ही हो तुम्ही मित्र वरुण सुख राशि ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक सवारा है तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है हे सब जग के प्रकाश के स्वामी जब यह सब जग दमका देना हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना देह नयन बिन रैन चंद बिन नारी पुरुष बिना जैसे पंडित वेद विहीना तैसे मन प्रभु नाम विना कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन मंदिर दीप बिना जैसे तरुवर फूल विहीना वैसे मन प्रभु नाम विना ओम शांति 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 ओम।
आदरणीय श्री आचार्य प्रवीण जी आर्य भद्र पुरुषों उपस्थित माननीय मातृशक्ति समय बहुत थोड़ा है थोड़े समय में थोड़ी सी सेवा आपके करने की इच्छा है आप सभी बोलिए आत्मदा ये अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में से एक मंत्र है चौथा मंत्र है तीसरा बल्कि उस मंत्र के दो चार शब्दों को हम देख लेते हैं सभी बोलिए आत्मदा तो दा शब्द तो आपने समझ लिया है दा का अर्थ है देने वाला ठीक है दा का अर्थ है देने वाला इसी से देव बनता है इसी से महादेव बनता है तो परमात्मा कैसा है आत्मदा आत्मा का देने वाला लेकिन वेद तो बताते हैं कि आत्मा भी किसी ने दिया हुआ नहीं है आत्मा ऐसे ही है पहले से जब से परमात्मा है तब से आत्मा भी सृष्टि में है आत्मा किसी ने बनाया हुआ नहीं है अगर बनाया हुआ होगा मानेंगे तो बिगड़ा हुआ भी मानना पड़ेगा कभी जन्मा है ऐसा मानेंगे तो कभी नष्ट होता है ऐसा भी मानना पड़ेगा So when we say Atma, it doesn't mean that Atma has been given by somebody else. Atma means Atmik Jnan ka dene wala. Maharshi Dayanand ne Atma Da shabd ka arth kiya hai Atma Jnan ka data. Atma Jnan ka data. Bahari sabhi jnan jo hai usse bolte hai apara vidya. Boliye apara और जो आत्मिक विद्या है उसे बोलते परा बोलिए तो परमात्मा परा विद्या का प्रकाशक है जो हम तमाम प्रकार के विज्ञान पढ़ते हैं इतिहास भूगोल गणित और तमाम भाषाएं पढ़ते हैं शास्त्र के भाषा में इसे बोलते अपरा अपरा विद्या मैंने जो परे की नहीं है जो थोड़ी उरे की है थोड़ी इधर की है थोड़ी यहां की है और ये थोड़ी परे की है कौन सी आत्मज्ञान शरीर का ज्ञान तो हो गया अपरा विद्या और आत्मा का ज्ञान हो गया पराविद्या। तो वेद कहते हैं परमात्मा कैसा है, आत्मदा है, आत्मज्ञान का देने वाला है। अब जरा आपने समाज पर दृष्टि डालिए, समाज मतलब व्यापक समाज, मनुष्य समाज, जो जो मनुष्य आत्मज्ञान के अभाव में जी रहे हैं उनकी तरफ देखिए, वो खाते भी हैं पीते भी हैं, थोड़े और व्यापक अर्थ में खाते पीते हैं, जब हम कहते खाते पीते तो मतलब थोड़ा और, वो सब कुछ करते हैं, बाल गोपाल भी उनके होते हैं, निद्रा भी है, थकान भी है, बच्चे भी हो जाते हैं, ये सभी उनमें होता है जैसे प्राणियों में होता है, जैसे पशु पक्षियों में होता है, जो बाहर के ज्ञान से युक्त है, उससे आगे कुछ नहीं। अगर उनके व्यवहार को देखेंगे तो बिल्कुल जानवरों की तरह दिखाई दे, पशुओं की तरह दिखाई देंगे आप। अगर आत्मज्ञान का अभाव होगा तो पशुओं की तरह झपटते हुए अवश्य दिखाई दे। मानवीयता जिसे कहना चाहिए, मानवता ये गुण नहीं है, ये केवल उसमें आएंगे जो आत्मज्ञान है। इसलिए विदुर नीति में समझदार व्यक्ति के लक्षण बताए, तो उसका पहला शब्द है आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। समझदार व्यक्ति वह है जो आत्मज्ञानी है, जो अपने बारे में जानता है, ही हु नोज और शी हु नोज अबाउट हिज और हर ओन सेल्फ। बाहर की चीजों को जानने वाले के लिए ज्ञानी नहीं कहा, इसलिए भारतवर्ष में आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाताओं को, उसके प्रवक्ताओं को सबसे ज्यादा आदर मान मिलता है। क्यों जी, जैसे स्वामी रामदेव महाराज यहां आए और जिस प्रकार हजारों लोग फ्रॉम ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जैसे इकट्ठे हुए, मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री आ जाएं या भारत के राष्ट्रपति आ जाएं तो भी इतने लोग नहीं इकट्ठे हुए, नहीं होंगे। और जैसे मेडिकल साइंस के लोग भी उनकी बातें सुन रहे थे, नहीं ऐसा होगा। इसलिए यह कहा कि जो आत्मज्ञान का प्रकाशक है वो उसके देश की कोई सीमा नहीं, उसका कोई अपना देश और पराया देश नहीं है, वो जहां जाता है वो उसको अपना देश समझता है और वहां के लोग भी उसे अपना समझते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञान का प्रकाशक है। और वेद में परमात्मा के लिए शब्द आया है आत्मदा, वह जो आत्मज्ञान का दाता है, जो देने वाला है। और याद रखिएगा, आत्मज्ञान के विहीन लोग हो जाते हैं, जो आत्मज्ञान जिनके पास नहीं है वो बहुत कमजोर होते हैं, चाहे वो कितने बलवान दिखाई दे। हमारे एक सहयोगी आचार्य एक अपने इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, वो भी पक्के आत्मज्ञानी तो और पक्के स्वभाव के थे, जब कक्षा में नकल हो रही थी तो उनको देखा नहीं जा रहा। एक कक्षा में एक संगीताचार्य थे, वो बेचारे मृदु स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के, संगीत में जैसे लोग चाहिए। कक्षा में एक लड़का था, त्यागियों का लड़का, वो तो गड़बड़ करने वाला था बालक, वो नकल करने लग गया। और जब संगीत के गुरुजी उसके पास पहुंचे तो उसने कहा, संगीताचार्य जी बैठो अपना वहां पर आराम से, सीधा कह दिया बस। संगीताचार्य जी से बैठा भी नहीं गया और उस लड़के को रोका भी नहीं गया, वो अपने बाहर निकल के प्रिंसिपल साहब के पास गए। प्रिंसिपल साहब भी उस लड़के से डरे हुए थे। प्रिंसिपल साहब आए और दुनिया की दृष्टि से थोड़ा धमकाया जा किया, और दूसरे कक्षा में एक आचार्य जी थे, उनको कहा कि आचार्य जी आप यहां ड्यूटी दे रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा जी, लेकिन वो आचार्य जी कुछ मालूम नहीं था कि मामला क्या हो रहा, उन्होंने समझा जैसे रूटीन में ड्यूटी लगती है कहीं हमारी इधर लग गई। वो आकर कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई सबके हस्ताक्षर हो गए, बोले नहीं वो अरुण 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 तक हुए हैं। बोले वो गए अरुण के पास, अरुण वही जो नकल करने वाला बालक, जैसे उन्होंने कहा अरुण हस्ताक्षर करने के लिए कागज तो उसने बाद में दिया, पहले वो नीचे फर्रा दिखाई दे रहा, यूपी की भाषा में उसे बोलते फर्रा, लंबा सा। वो जो आचार्य थे वो बोले अरे अरुण ये क्या कर रहा है, वो बोला गुरुजी, गुरुजी भी नहीं वो बोला गुरुजी, गुरुजी ये तो ऐसे ही चलेगा, बैठो अपना धोती संभाल के उधर। लेकिन वो जो है वो दुनियावी आचार्य नहीं, वो तो आत्मज्ञानी आचार्य, वो संगीताचार्य नहीं थे। वो अगर आपने संस्कृत साहित्य पढ़ा है तो उसमें एक शिवराज विजयम नाम का बहुत सुंदर काव्य आता है, बहुत सुंदर। ऋषि दयानंद महाराज के समय में उनके प्रतिस्पर्धी एक थे अंबिकादत्त व्यास, पौराणिक पंडित थे, बड़े तगड़े और संस्कृत के बहुत जानकार थे, गजब के। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन पर एक काव्य लिखा है, उसका नाम है शिवराज विजयम। उसमें उन्होंने शिवाजी का चित्रण किया है कि कैसे एक बार वो पंडित वेश धारण करके चले गए, और पंडित वेश धारण कर बिल्कुल बाकायदा पंडित बन करके गए किसी खान से मिलने, और वो समझ रहा कि ये तो पंडित जी आ गए। और बातचीत बातचीत में बात आगे आगे बढ़ती गई तो शिवाजी महाराज बोले, नैष टिड्ढाण पंडित, ये अष्टाध्यायी के सूत्रों को रटने वाला पंडित नहीं है तुम्हारे सामने जो खड़ा है, ये तो चंचत चंद्रहास चालन चातुर्य मुररी करोती पंडित है, ये मैंने अपने तलवार को चलाने में चपल ऐसा पंडित है, वो वाली बात हो गई। वो आचार्य जी जो है उसको कहा कि जरा अरुण उठ खड़ा होना एक मिनट के लिए उठ खड़ा होना। उसको लगा कि आप पता नहीं क्या करेंगे आचार्य जी, उसको कुछ अंदाजा नहीं था, वो उठ के खड़ा हो गया। आचार्य जी ने एक थप्पड़ लगा दिया, वो बच्चा गिर गया। कहने लगा, अरे दुष्ट, बोले हम ऐसे ही थोड़ी है, चल पकड़ के खींच के ले गए प्राचार्य की तरफ। और प्राचार्य कहा, इसको बाहर निकाल दो अभी के अभी, पुलिस को बुला। जो संगीताचार्य थे वो भी कोई कम नहीं थे, वो भी थप्पड़ लगाए तो शायद काम चल सकता था। लेकिन मैं ये कह रहा था, महर्षि दयानंद कहते हैं जो आत्मज्ञानी होगा, जिसके अंदर आत्मबल होगा, वो बड़े से बड़े बलवान से भी नहीं डरेगा। और जो माने आत्मज्ञान से विहीन व्यक्ति होगा, वो घोर कमजोर होगा, वो कमजोरों से भी डरता फिरेगा। जो परमात्मा से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो उससे नहीं डरता वो सबसे डरता फिरता। आत्मज्ञान, आत्मदा, बलदा। फिर ऋषि दयानंद वर्णन करते हैं बलदा का अर्थ क्या है भाई, वो कहते हैं शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला। केवल शारीरिक बल का नहीं है, शारीरिक बल तो बहुत गौण बल है, मालूम है आपको, बहुत सेकेंडरी बल है। फिजिकल पावर तो बहुत सेकेंडरी पावर है, जो आत्मिक पावर है वो वास्तविक पावर है। क्यों जी, हाथी कितना बड़ा होता है और छोटा सा आदमी बैठ करके उसको जिधर चाहे घुमा लेता है। शेर कितना बड़ा होता है, कितना पावरफुल, लेकिन छोटा सा आदमी उसकी जो है, मैंने देखा वहां बाबा आमटे का जो बेटा है महाराष्ट्र में बैठा हुआ जंगल में जाकर के लोगों की, दलितों की, गरीबों की सेवा करते हुए, उसको देखा टीवी पर, वो शेर की पूंछ पकड़ के उसको फेंक दिया उठा करके, और शेर ऐसा आ गया गुस्से में, घर ऐसे कहते चुप बैठ गया। और वो उसको अभी पुरस्कार मिला है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है उसको। डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, लेकिन उन वनवासी जनों की सेवा करने के लिए वहां जाकर बैठा है। और वो मैं समझता हूं कि वो बड़ा भारी आत्मबल उसके अंदर है। शेर की बात फिर भी गौण है, लेकिन वहां इतना पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड, सुप्रसिद्ध बाप का सुप्रसिद्ध बेटा, और वहां जाकर जंगल में बैठा कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है। तो उसके कारण ही मनुष्य में आत्मबल आता है, आत्मसंस्कार, आत्मज्ञान, आत्मबल। वेद का मंत्र कहता है यह आत्मदा बलदा, परमात्मा कैसा है, आत्मज्ञान का दाता है, आत्मबल का दाता है। ए देवियों सज्जनों, अगर आप आत्म को जानेंगे ही नहीं तो कैसे बल आएगा और कैसे ज्ञान आएगा। बोलिए सभी नारद, अच्छी तरह बोलिए नारद। नारद बड़ी वेल नोन फिगर है, और वो बहुत बड़े विद्वान थे। घूमते घूमते सनत कुमार, वो बड़े अस्वस्थ रहते थे, इतना सारा पढ़ने के बावजूद बड़े अस्वस्थ रहते थे, ही वॉज नॉट हैप्पी। तो वो सनत कुमार जी के पास गए और कहने लगे मुझे कुछ सिखा दो, समझा दो, पढ़ा दो। तो सनत कुमार जी बोले आपने इतना सीखा, पढ़ा, सीखा, समझा है। तो उन्होंने कहा कि कछु नहीं पढ़ा। बोले क्या क्या पढ़ा है पहले बता तो दो। भाई जो गुरु पढ़ाना चाहता है वो पहले ये देखता है कि शिष्य कहां तक है, किस स्तर पर है आप, ताकि आगे का पढ़ा लिया जाए ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो नारद जी बोले मैंने ऋग्वेदम, भगवो अध्यमी, यजुर्वेदम, सामवेदम, अथर्वणम, वाक्यो वाक्यम, इतिहासम, पंचमम, वेदा, मैंने पचासों चीजों की उन्होंने गणना की कि मैंने ये पढ़ा है, और कहा कि बस इतना मैं जानता हूं। सनत कुमार जी बोले हे प्रभु, इतना तो तुम जानते हो, और क्या जानना चाहते हो। नारद जी ने बड़ी अच्छी सुंदर एक बात कही, दो शब्द हैं, आप भी कहिए, प्लीज आप कहिए, बोलिए शब्दवित, आत्मवित। उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो केवल शब्दों को जानता, मैं तो केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसे कंप्यूटर में कोई फीड करते हैं, मैंने अपने इस दिमाग में तमाम प्रकार के कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन फीड की हुई है, बाकी ना हम आत्मवित, मैं आत्मवित नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। माने नारद जैसा ऋषि, अगर आप उसके लिस्ट को पढ़ेंगे कि कितने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है, केवल मतलब जो है भौतिक ग्रंथों का नहीं, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, वहां भी वो कहते कि मैंने अध्ययन ही किया, उसके आगे मुझे कुछ नहीं आता। शब्दवित माने शब्द का जानने वाला हूं, आत्मवित मैं नहीं हूं। जो आत्मवित हो जाता है, वन हु नोज हिज और हर ओन सेल्फ, दैट इज द ब्यूटी। ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड ही इज द मोस्ट मोस्ट ट्रैंक्विल, मोस्ट सीरीन, मोस्ट हैप्पी, काम एंड क्वाइट पर्सन। हैदराबाद में एक पंडित हैं, पंडित गणेश देव जी, वो ये कहा करते थे कि भाई देखो, खुश होने के लिए, आनंदित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए जब तक बाहर की तमाम चीजों की आवश्यकता है तो समझ लो अभी बहुत कच्चे हो। उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, एक कसौटी बना दी। भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, अकेलापन है तो कोई साथी चाहिए, पत्नी अकेली है, पति ना हो तो बेचारी वो भी परेशान हो जाती है, अकेलापन आदमी को खाने को पड़ जाता है, पति अकेला है तो खाने को पड़ जाता है। तो ये सब तमाम चीजें है, गाड़ी ना हो दो चार दिन के लिए गाड़ी वहां गैरेज में पड़ी जाती, गाड़ी नहीं ड्राइविंग करनी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑफिस में जाने का चांस, दो चार दिन छुट्टियां हैं, एक दो दिन मौज मस्ती की, बाकी कहीं घूमने भी नहीं गए, घर में बैठे बैठे परेशान हो गए। अरे काम जब था तो घर में बैठना चाहते थे, अब घर में बैठे बैठे परेशान, तो काम पर जाना चाहते हो। माने आप देखेंगे, वो पंडित गणेश देव जी कहते हैं कि जब तक आपको प्रसन्न रहने के लिए, ठीक रहने के लिए, सुखी रहने के लिए बाहर की तमाम चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो समझ लो आप बहुत कच्चे, बहुत कच्चे। आप यहां बैठे हैं हॉल के बीच में, यहां बिल्कुल अकेले बैठे हैं, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं, आपके साथ बात करने को कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, और आप शांत बैठे बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है आपको ऐसे घंटा भर, दो घंटे, और बिना किसी परेशानी, समझ लीजिए आप पक्के होने की तरफ एक स्टेप आगे। नाशिक के पास, महाराष्ट्र में नाशिक के पास एक इगतपुरी नाम का स्थान है, इगतपुरी में बहुत बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, बहुत बड़ा। उसकी खूबी यह है कि बड़ा ही वेल इक्विप्ड सेंटर है, सारी सुविधाओं से लेस, और वो एक पैसा भी नहीं लेते पार्टिसिपेंट्स, कहते आओ 10 दिन का कार्यक्रम है, कुछ एक्टिविटीज नहीं, आप व्यायाम भी नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, आप सो भी नहीं सकते, आप 6 घंटे सोना है या 7 घंटे सोना है, उतना ही सोना है बस, प्रश्न उत्तर भी नहीं है, व्याख्यान भी नहीं है। वो ऐसी टेक्निक सिखाते हैं, कहते आपको जागृत अवस्था में शांत बने रहना, एक जगह 8 आवर्स 10 आवर्स। जो कच्चे लोग हैं पहले 2-4 दिन तो बावले होकर निकल जाते, कहते यार खाने को पड़ गया सारा, ये हॉल कुछ है ही नहीं, वहां कैसे बैठे, वहां बोलना किसी से नहीं, पढ़ना भी नहीं है, व्यायाम भी नहीं करना है, घूमने को जाना नहीं है, व्याख्यान भी सुनना नहीं, कुछ करे तो क्या करे। पंडित गणेश देव जी कहते हैं जब तक तो कुछ किए बिना आपका मन नहीं लगता तो फिर मतलब बहुत कच्चे हैं, कच्चा घड़ा है ना। पक्का घड़ा वो है जो किसी चीजों के बिना आप बैठे आराम से, टीवी ऑन नहीं है, रेडियो ऑन नहीं है, टेलीफोन नहीं है, आप शांति से बैठे बिल्कुल अकेले, समझ लीजिए पक्के होने की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ, आत्मस्थिति की तरफ एक कदम आपका आगे बढ़ा हुआ। मेरा समय समाप्त हो रहा है, मेरा 2 ही शब्द आज मुझे कहने थे, आत्मदा बलदा। प्रभु कैसा है, आत्मिक ज्ञान का देने वाला है, और वास्तविक आत्मज्ञान ही आत्मबल देता है। जिसके पास आत्मबल है वास्तव में वही बलशाली है, बाकी जो बाहर का बल है वो हाथियों का, ऊंटों का, शेरों का, घोड़ों का बल है, जिनके ऊपर उनसे कमजोर लोग राज करते हैं। तो आइए आज हम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का संकल्प ले। ओम शांति।